71वीं गाथा है स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, उसके अंतर्गत संसार अनुप्रेक्षा का चित्रण है। संसार में जीव पांच प्रकार से परिवर्तन अर्थात भ्रमण करता है, तो पंचम परिवर्तन यानी भाव परिवर्तन का वर्णन है। 71वीं गाथा अगास वाली प्रति में पृष्ठ 35, परिणमदि सन्नी जीवो विवह कसाई छिद निमित्ते ही अनुभाग निमित्ते ही बठंतो भाव संसारे। भाव संसारे वट्टंतु, भाव संसार में परिवर्तन करते करने वाला सन्नी जीव सैनी जीव विवेक कसाई ही परिणम दी, अनेक कषायों से परिणत हो जाता है। ठिदी निमित्त ही, कैसे हैं वे कषाय? स्थितियों के निमित्त हैं। अनुभाग निमित्त ही, और अनुभाग के भी निमित्त हैं। ठिदी अनुभागा कषाय दो होती, स्थिति और अनुभाग बंध, बंध के चार भेद हैं। वैसे बंध की पद्धति जैन दर्शन में बड़ी वैज्ञानिक है। सांख्य मत में बौद्ध मत में अलग अलग प्रकार से मान्यता है, हर जगह ये तो मानते हैं वो जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन जैन दर्शन में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर अपने कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में 10 प्रकार के परिणाम यानी भाव जीव संबंधी होते हैं ऐसा बतलाया है। वो पांच भाव अलग हैं जिसके 53 भेद हैं, लेकिन 10 प्रकार के करण होते हैं जीव के। बंध उदय सत्व उपशम क्षय उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निधत्त और निकाचना, ऐसे करण होते हैं। और फिर ये कर्म बंध की जो प्रक्रिया है, जैसे उनके यहाँ ये मानते हैं कि अदृष्ट नाम का एक संस्कार पड़ता है। जब भी कोई प्राणी मन वचन काय से अच्छे या बुरे कार्य करता है तो फिर उसकी आत्मा में एक अदृष्ट, अदृष्ट यानी जो दृष्टि में नहीं आ सकता, ऐसा कोई इम्प्रेशन संस्कार पड़ जाता है। और फिर जब कालांतर में वो संस्कार फलित होता है तब जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये उनकी मान्यता है। जैन दर्शन की मान्यता ये है कि आत्मा अमूर्त है इसलिए उस पर कोई निशान नहीं पड़ सकता। क्या अमूर्त है? अमूर्त यानी अरूपी है, उसके ऊपर कैसे चिन्ह पड़ जाएगा किसी चीज का? तो इसलिए आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा के विकारी भावों के कारण जो यहीं विद्यमान बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं जो जीव द्रव्य में सम्मिलित नहीं है किंतु अजीव है, और उन परमाणुओं में से 5 प्रकार के ऐसे परमाणु जिनको वर्गणाएं कहते हैं, 5 प्रकार की वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है। 23 प्रकार की वर्गणाओं में से 18 वर्गणाएं अग्राह्य होती है, 5 वर्गणाएं जीव ग्रहण कर सकता है। आहार वर्गणा, शब्द वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा और कार्मण वर्गणा, 5 वर्गणाओं को जीव ग्रहण कर सकता है। तो कार्मण वर्गणा रूप जो परमाणु सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं, अपनी आत्मा के प्रदेशों के साथ भी बहुत सारे ऐसे चिपके रहते हैं, कर्म रूप में नहीं, वो सहज रूप से चिपके रहते हैं। विसरसा, विसरसा यानी ऑटोमेटिक अपने आप, जो उपचय के रूप में संचित जीव के साथ लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। जैसे आप रास्ते से चले जाओ तो बहुत सारी धूल ऐसे ही चिपकी रहती है आपके कपड़ों में, वैसे वो कर्म परमाणु अपने साथ चिपके रहते हैं। वो कार्मण शरीर नहीं है, लेकिन जब जीव रागादि परिणामों को प्राप्त होता है यानी कषाय करता है, उस समय उन्हीं परमाणुओं में से एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु कर्म के रूप में परिवर्तित होकर और फिर जीव के प्रदेशों के साथ एक मेक, जैसे दूध और पानी घुल जाते हैं ना, वैसे एक मेक होकर के फिर बंध जाते हैं। वो विसरसोपचय जो है अबद्ध परमाणुओं का समूह है, और कार्मण शरीर जो है वो बंधे हुए कर्मों का समूह है, इन दोनों में फर्क है, और दोनों साथ में है अपने। विश्वसोपचय भी इस समय अपने साथ मौजूद है, और कार्मण वर्गणाएँ जो सहज रूप से विश्वसोपचय के रूप में, और दूसरे जो कार्मण शरीर के रूप में परिणत जो कर्म बंध है वो भी अभी इस समय अपने साथ, डेढ़ समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु इस समय अपन लेकर के बैठे हुए हैं। और समय प्रबद्ध का अर्थ समझ लो आप, एक मापने का प्रमाण है वो, जैसे लीटर से आप लिक्विड को नापते हैं और किलो से सॉलिड को नापते हैं, ठीक है ना। किलो के माप से आप किसी ठोस पदार्थ का माप निकालते हैं, और अगर तरल पदार्थ हो तो फिर उसको दूसरे प्रकार के लीटर वगैरह से नापते हैं। तो उसी प्रकार अपनी आत्मा में जो कर्मों का बंध होता है वो कितनी मात्रा में होता है, कितने परमाणु आकर के अपनी आत्मा में बंधन को प्राप्त होते हैं, तो उसका माप शास्त्रों में बताया। एक समय प्रबद्ध माने एक समय, काल का सबसे छोटा खंड, उसमें कितने परमाणु आते हैं उसका माप इतना है। तो बोलते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी जितने हैं उनका अनंतवा भाग, यानी सिद्ध परमेष्ठी अनंत है, उस अनंत का अनंत से भाग दे कर दो तो भी अनंत आने वाले हैं। तो उतने अनंत परमाणु एक समय में अपनी आत्मा में बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। अभी जो अपन बात कर रहे हैं ना, तो इसमें तो कितनी आवलियां निकल जा रही है, संख्यात असंख्यात आवलियां व्यतीत हो रही है। एक आवली में असंख्यात समय है, एक समय में इतने परमाणु आकर के आत्मा बनते हैं, और इतने ही झड़ते भी हैं क्या? हाँ वो तो वो एक अलग बात, वो हम बाद में बता रहे हैं। अभी एक क्या है कि इनको आइडिया हो जाना चाहिए पहले कि क्या वो चीज़ क्या है, पूरी क्लियर समझ में आनी चाहिए। पहले स्थूल वर्णन फिर सूक्ष्म वर्णन बाद में करते हैं। तो उतने परमाणु आते हैं, फिर उदय में भी आते हैं कर्म, तो उदय में आकर के वो फिर ततश्च निर्जरा, एक सूत्र है आठवें अध्याय में याद है, तत्वार्थ के एक विपाको अनुभव स यथा नाम फिर ततश्च निर्जरा। उसके बाद निर्जरा का मतलब पृथक हो जाना, झड़ जाना, लेकिन पूरा नहीं झड़ना वो निर्जरा। सात तत्वों का हमने दृष्टांत दिया था, आपको याद होगा, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। घर के अंदर आप बैठे हैं ये समझ लो जीव है, किसी ने दरवाजा खटखटाया वो अजीव है दृष्टांत में, नहीं तो फिर वो तो जिंदा आदमी है उसको अजीव मत बना देना, दृष्टांत में वो जीव अजीव समझ लो। दरवाजा खोला आश्रव, अंदर चाय नाश्ता कराया बंद। अब वो चार छः लोग आ गए थे, तो चार छः में से दो लोगों को थोड़ा जल्दी जाना था, वो चले गए निर्जरा। फिर बाहर से और भी लोग अंदर आना चाहते हैं, लेकिन आपने दरवाज़ा अभी खोला नहीं, बोले कि अभी थोड़ी देर लगेगी, आप कुछ समय 15 मिनट घूमाओ, या फिर अभी आने नहीं मिल रहा है, अभी बंद है। फिर वो हो गया संवर, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब फिर जो अंदर जितने थे बाकी बचे थे, वो भी जो पूरे के पूरे चले जाए, अकेला जीव रह जाए, उसका नाम मोक्ष। आ गया सात तत्व, एकदम सुगम दृष्टांत है। जीव अंदर है कमरे में, दरवाज़ा खटखटाने वाला अजीव, दरवाज़ा खोला आश्रव, चाय नाश्ता कराया बंद, क्योंकि वो जब तक चाय नाश्ता पूरा नहीं होगा तब तक बैठेगा, वो ऐसे थोड़ी जाएगा बीच में, बंद। वो चाय नाश्ता जो है स्थिति अनुभाग कषाय, और द्वार जो है वो मन वचन काय के द्वार है योग। फिर संवर यानी बाहर से आने वालों को तो आपने मना किया कि अभी आप लोग थोड़ा इंतजार करो, और फिर अंदर जो लोग थे उसमें से कुछ लोग बाहर चले गए, ये निर्जरा है। एक देश कर्मणांक संक्षय निर्जरा, कर्मों का कुछ विभाग बाहर चला जाना निकल जाना निर्जरा है, और पूर्ण क्षय मोक्ष, सब चले गए और वो बाहर से आने वालों को आने नहीं दिया, बोले आज नहीं खुलने वाला दरवाज़ा, अकेला रह गया जीव मोक्ष। वो व्यावहारिक दृष्टांत में क्या होता है कि कल खुल भी जाता है दरवाज़ा, लेकिन एक बार यहाँ आध्यात्मिक दृष्टांत में दार्ष्टांत में ये बात है कि एक बार अगर मोक्ष हो जाता है तो फिर वापस संसार नहीं होता, वो पूरी तरह से सबका अभाव हो जाता। तो कर्मों की जो बात जैन सिद्धांत में वो ये है कि जैसे अभी जो आवाज़ हमारी निकल रही है यहाँ से, ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, लेकिन ये आवाज फिर विलीन हो जाती है, इसको आप दोबारा कैसे सुनोगे? क्या बोला था, इसके बाद कौन सा शब्द था, इसके बाद कौन सा वाक्य था, इसके बाद कौन सा विषय था, कौन सी गाथा चली थी, पेज नंबर क्या था, ये सब पूरे डिटेल्स रिकॉर्ड करो तो फिर वो चीज रहती है रिकॉर्ड में। और होता क्या है रिकॉर्डिंग में, यहां से जो मैकेनिकल वेव्स हमारे मुख से निकल रही है वो इस माइक्रोफोन नामक यंत्र में, इसके अंदर जो कुछ भी है औजार, उसके माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में परिवर्तित हो जाती है वो तरंगे। तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यहाँ से होकर के इस वायर से, ये लीड वायर कहलाता है, इस लीड वायर से होकर उधर एम्पलीफायर में जाती है। एम्पलीफायर में ये जो तरंगे हैं एम्पलीफाई होती है, मतलब वृद्धि को प्राप्त होती है, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है आवाज़ बढ़ जाती है। अभी ऑफ हो जाए तो आवाज़ इतनी ज़ोर से नहीं आएगी, ऑन है इसलिए वो आवाज़ जो बढ़ गई है, फिर वो वहाँ एम्पलीफायर के पीछे से कुछ तार निकल कर बॉक्स में जाते हैं, साउंड बॉक्स में, स्पीकर्स में, और स्पीकर्स में वापस वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग बढ़ी हुई अभी यहाँ से जो एम्पलीफायर में जा रही है वो सामान्य तरंग जा रही है, और एम्पलीफायर से निकल कर पीछे स्पीकर में आ रही है वो बढ़ी हुई एम्पलीफाइड तरंगें आ रही है, और फिर वो स्पीकर में फिर वापस मैकेनिकल तरंगों में बदल करके आपके कानों तक सुनाई देती है। इसमें तार को कान में लगाओगे तो नहीं आएगी आवाज़, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। तो अब वहां जो आवाज आ रही है उसको अगर कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया जाए, दोनों बातें हो सकती है, वो जो एम्पलीफाइड ध्वनि है या फिर सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग है। वो कैसेट एक ऐसा यंत्र है कि जिस पर रिकॉर्डिंग हेड के माध्यम से इसी ध्वनि को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके निशान पड़ जाते हैं कैसेट की टेप पर, पूरे ऐसे बारीक तरंगों के निशान बन जाते हैं कैसेट की टेप पर, और फिर उसको वापस आप किसी हेड पर प्ले करोगे तो वो हेड उन तरंगों को रीड करके और फिर उसकी आवाज़ को पकड़ करके वहाँ तक स्पीकर में आपको वापस ये आवाज़ सुना सकता है। ये दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टांत क्या है, जीव पुण्य और पाप करता है उसका फल कैसे मिलता है, यानी पुण्य और पाप तो रिकॉर्डिंग हो गई, अब वो प्ले कैसा होगा, तो उसका ये दृष्टांत था कि होता ये है कि ये जो मन वचन काय के द्वारों से वहाँ तक आत्मा में वो जो कार्मण वर्गणा रूप परमाणु इकट्ठा है वो कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। क्या अभी सामान्य परमाणु थे कार्मण वर्गणा के, अब जैसे ही अपन ने मन वचन काय की प्रवृत्ति और कषाय के साथ में कोई भी कार्य किया, पुण्य या पाप रूप कार्य, तो फिर वो जो परमाणु हैं वो परमाणु, अब देखिए पुण्य और पाप जीव के भाव हैं, लेकिन अब पुद्गल में पुण्य और पाप नाम पड़ जाते हैं कि देखो ये इतने परमाणु जो है ये इसने शुभ भाव के साथ बांधे हैं, ये शुभ पुण्यस्य, ये पुण्य के परमाणु हो गए, और ये परमाणु जो है दूसरे वाले ये अशुभ पापस्य, ये पाप के परमाणु हो गए। तो एक साथ एक जीव में पुण्य और पाप दोनों प्रकार के परमाणु चिपक जाते हैं, और वो जो परमाणु चिपक जाते हैं तो वो अपनी अपनी शक्ति के साथ अपनी अपनी समय की अवधि के साथ चिपकते हैं। बंध चार प्रकार का बताया शास्त्रों में, कौन सा, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति बंध का मतलब क्या होता है, उसमें एक नेचर हो जाता है, उस कर्म में एक प्रकार की जाति हो जाती है कि ये इस जाति का कर्म है, प्रकृति बंध हो गया। ज्ञान पर आवरण डालने वाली जाति होगी तो वो ज्ञानावरण, मोहित करने वाली जाति होगी तो वो मोहनीय कर्म, विघ्न डालने वाले कर्म प्रकृति होगी तो उसका नाम होगा अंतराय कर्म, सुख दुख का वेदन कराने वाली प्रकृति होगी तो उसका नाम वेदनी होगा। तो इस प्रकार ये प्रकृति बंद हो जाता है। हाँ है ना, उसमें सभी जातियां, हाँ वो होता है, उसका दृष्टांत आचार्य कुनकुन स्वामी ने समय सार में यही दिया मन से बसा रुदि रुहिरादि। जैसे अपन भोजन तो मुंह से करते हैं, वो जो भी भोजन रहता है एक ही थाली में रहता है, लेकिन वो शरीर के अंदर जाने के बाद बंटवारे को प्राप्त हो जाता है, कुछ रुधिर में चला जाता है, कुछ अंश, कुछ वसा रूप में परिणत हो जाता है, कुछ मांस आदि रूप में बदल जाता है, और ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के बंटवारे हो जाते हैं। अभी जो घटना हुई उसमें भी जिसके मन में राग द्वेष हुआ, उस समय भी सब हिसाब किताब बराबर हो गया, वो सब पूरा व्यवस्थित चलता है कार्यक्रम, अपन होश में रहें या बेहोशी में। कौमा में भी कर्मबंध चालू रहता है, क्योंकि परिणाम उस समय समाप्त नहीं होता। जीव तो चेतन स्वरूप है, वो अचेतन तो नहीं हो जाता कौमा के समय, बेहोश पड़ा है लेकिन चेतना तो है। उसको व्यावहारिक भाषा में अचेत बोलते हैं, लेकिन अचेतन नहीं है वो, चेतन है लेकिन अचेत है। तो उस समय भी उसके जो कषाय उदय में आती है, तो अव्यक्त रूप से जो भाव चलते रहते हैं वो कर्म बंध में। अब यहां तो छोड़ो, अब विग्रह गति में हो जाता सब काम, जब कोई शरीर ही नहीं उसके पास, सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, कार्मण तेजस शरीर, तो भी काम हो जाता है। तो इस तरह ये विभाग तो चलता ही रहता है जीवों में। और वो जो परमाणु है पुण्य और पाप आदि के रूप में बटे हुए, वो उसका प्रकृति बंध है। अलग अलग प्रकार से विभाग हो गया, फिर प्रकृति बंध के बाद दूसरा क्वांटिटी कितनी आई, इसको ये कह लो क्वालिटी, क्वांटिटी, फिर इंटेंसिटी और एक्सपायरी रेट, चार प्रकार के बंध हो जाएंगे। क्वालिटी जो है ये प्रकृति बंध, या वैरायटी कह लो प्रकृति बंध। तो इस प्रकार का कर्म बंधा है, ये प्रकृति बंध हो गया। फिर दूसरा प्रदेश बंध, क्वांटिटी, कितनी मात्रा में परमाणु आए। अब मात्रा की जब चर्चा होती है तो फिर हर समय समय प्रबद्ध प्रमाण तो आते हैं परमाणु, लेकिन समय प्रबद्ध एग्जैक्ट एक जैसा नहीं रहता हमेशा। किसी अपने योग के कारण, मतलब मन वचन काय की प्रवृत्तियों के कारण, कभी थोड़ा ज्यादा परमाणु भी आ सकते हैं। अभी 20 आ रहे हैं तो 50 भी आ सकते हैं, या 15 भी आ सकते हैं। ये एक दृष्टांत दिया, वैसे तो अनंत है वो, तो अनंत के लिए कोई संख्या अपने पास है नहीं उदाहरण में, तो अपन ने 20-50 का दृष्टांत ले लिया। तो कभी वो संख्या बढ़ भी जाती है, कभी घट भी जाती है। ये प्रदेश बंद हो गया, क्वांटिटी, मात्रा। फिर तीसरा बंद कौन सा था, अनुभाग कह लो, स्थिति कह लो, कोई भी ले लो, मतलब अपन क्रम छोड़ो, उसको भाव से समझ लो आप। चलो अनुभाग बंद ले लिया, अनुभाग का मतलब क्या होता है, विपाक अनुभव, उसकी तीव्रता और मंदता, तो उसको अंग्रेजी में इंटेंसिटी बोलते हैं, पावर कितना है उसका कर्म का। जैसे कुछ दवाइयां ज्यादा कड़वी होती है तो उसको चाशनी के साथ दे देते हैं, या और किसी में मिलाकर दूध के साथ पी लेना, बोले मिला करके थोड़ा शक्कर वक्कर डाल करके पी लेना। तो फिर क्या करते हैं उसमें, कि वो जो इंटेंसिटी है जो सामान्यतः सहन नहीं कर पाते अपने जीवाएं दे, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ले आते हैं। तो उससे क्या होता है, फर्क आ जाता है उसमें, इंटेंसिटी कम हो गई, जो कड़वाहट थी वो अब घट गई। तो उसी प्रकार अपन जब कर्म का बंद करते हैं तो कभी तीव्र अनुभाग शक्ति वाले कर्म बनते हैं, कषायों पर निर्भर करेगा ये, और कभी मंद शक्ति वाले भी होते हैं। तो उसका फल भी तदनुसार होगा, जैसे क्रोध मान माया लोभ सपने में भी चल रहे हैं, और कभी आप जागृत अवस्था में एकदम भयंकर कषाय में आकर के फिर क्रोध मान माया लोभ करो, तो फिर उस समय उसकी जो शक्ति होगी उसमें फर्क पड़ जाएगा। अनुभाग बंद, इंटेंसिटी, पावर, और फिर स्थिति बंद। स्थिति बंद का मतलब वो कर्म जो आत्मा में बंधा है, वो बंधा तो है लेकिन जब तक बंधा पड़ा है तब तक उससे कोई आत्मा का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ बंधा पड़ा है। नुकसान होता है उदय से। अब श्रेणिक राजा को नरकायु का बंध हुआ था, लेकिन उस नरकायु के बंध से श्रेणिक राजा को नरकों की वेदना का अनुभव जीवन भर नहीं हो पाया। और जब उस आयु का उदय आया तब फिर उसको दुर्गति में जाकर घोर वेदनाओं को भोगना पड़ा। तो परिणाम क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला? अपने अंतराय कर्म का उदय है। कर्मों की चर्चा है। तो उस समय जब उदय में आता है कर्म, तब उसका फल मिलता है। वो एक अलग विषय है। वो उसका कारण दूसरा, अणुव्रत न धारण करने का कारण ये है कि नरकायु के योग्य जिसने भाव कर लिया और बंध बांध लिया, तो उसको जीवन भर कषायों का, चारित्र मोहिनी का ऐसा उदय आएगा अनुभाग का कि वो अणुव्रत धारण करने योग्य नहीं हो सकता। यानी उसको नियम से अप्रत्याख्यानावरण कर्म का ही उदय बना रहेगा, ऐसा है। यानी नरकायु जो सत्ता में पड़ी है, वो किसी एक नए विवक्षा से अणुव्रतों में बाधक है। अणुव्रतों में साक्षात बाधक तो उसका चारित्र मोहनी कर्म है, क्योंकि चारित्र को रोकने वाला कर्म आयु कर्म नहीं है, वो चारित्र मोहनी कर्म है। अभी अपन क्या है कि यहां पर सिंपल विषय ले रहे हैं ताकि ये लोग तैयार हों, कुछ नई बातें सीख ले। ज्यादा सूक्ष्म जाएंगे तो फिर ये कल से लोग एब्सेंटीज बढ़ जाएंगे। तो उसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे एक्सपायरी डेट। लेकिन दिक्कत यह है कि राजा मरने के पहले किसी और को राज्य सौंप के जाता है। क्या कर्म राजा जो है वो जब उदय में आता है तो फिर जीव को ऐसा धक्का लगा करके जाता है कि वो राग द्वेष कर बैठता है, और जैसे ही राग द्वेष किया तो वो सिंहासन और वो पूरा उत्सव हो गया, मतलब राज्याभिषेक का महोत्सव हो गया। जैसे ही जीव ने राग द्वेष भाव किए तो फिर नया कर्म आकर के उत्तराधिकारी के रूप में बैठ गया। समझ रहे हैं आप दृष्टांत को? तो जब तक कर्मों की एक्सपायरी डेट नहीं आती, अब वैसे क्या होता है कि दवाई भी एक्सपायरी डेट के बाद खतरनाक हो जाती है। आ रहा है समझ में? एक्सपायरी डेट के अंदर आप दवाई लो तो फिर उससे आपको फायदा होगा। यानी कर्मों का जब तक उदय नहीं आता तब तक आप संक्रमण आदि कर लो तो फिर फायदा होगा। उसका हिसाब प्रायश्चित वगैरह करके कर्मों का हिसाब किताब बराबर कर दो तो फायदा होगा। लेकिन अगर एक्सपायरी डेट आ गई उस कर्म की, उदय में आ गया वो, और उसके बाद अगर आपने राग द्वेष कर दिए उदय में आने पर, तो फिर फंस गए, फिर नवीन कर्मों का बंद हो जाता है। नवीन कर्मों का बंद हो जाने से फिर वो पूरी प्रक्रिया जो की त्यों, चार प्रकार का बंद, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, वो संसार यही इसी चक्कर का नाम है। ये भी दोनों नयों की विवक्षा है। मतलब आप कर्ता किसको बनाना चाह रहे हैं उस अपेक्षा से बन जाएगा। तो व्यवहार नय से कर्म राग द्वेष की करता है, अशुद्ध निश्चय नय से जीव राग द्वेष का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से जीव अपने ज्ञानादि भावों का करता है। ऐसे नए विभाग लगा लो तो फिर वो अर्थ निकल आता है। वैसे तो जो रिकॉर्डिंग वाली हम बात कर रहे थे, ये जो दृष्टांत कैसेट रिकॉर्ड हो जाती है फिर आप उसको सुन सकते हैं ज्यों का त्यों, वैसे ही आप पाप पुण्य कमा लेते हैं तो उसका फल आप ज्यों का त्यों भोग सकते हैं। ये हिसाब है उसका। माने वो जब बजेगी कैसेट, अभी तो आप दूसरों की कैसेट बजवा रहे हो अपने हिसाब से, अपनी मन वचन काय की चेष्टाओं से और कषायों से आप दूसरों को अभी परेशान कर सकते हैं। लेकिन जब उसका परिणाम आएगा सामने, जब वो रिकॉर्डेड कैसेट प्ले होगी, तब फिर खुले गए अपने उपन्यास के एक एक पन्ने। बड़ा अद्भुत उपन्यास है अपने जीवन का। और उसके एक एक पेज और एक एक लाइन और एक एक अक्षर, एक एक मात्राएं अपन ने बनाई हैं। और कभी कोई ऐसा पेज खुलता है तो अपन ऐसे अचंभित हो जाते हैं कई बार बीच में, क्योंकि भूल जाते हैं ना कि अपन क्या क्या लिख चुके हैं, कितने जन्मों से अपन ने क्या क्या लिखा है अपने उपन्यास में, भूल जाते हैं। और जब वो पेज खुलते हैं एक के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरे, तब घबराहट होती है कि अब कल क्या होगा। विपत्ति के समय रहता है ना ऐसा, कल क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, जो आपने लिखा है वही होगा, और एक बाल मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा उसमें, जो आपका लिखा हुआ है वो ही होने वाला है, ये सुनिश्चित है, कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। जैन दर्शन के अनुसार जीव का लेखा जोखा स्वयं उसी के पास होता है, किसी दूसरे के पास नहीं। इसलिए इस कर्म की सूक्ष्मता को और रहस्य को केवली भगवान के सिवाय कोई दूसरा दर्शा नहीं सकता था, तो अन्य मतों ने केवली भगवान को न मानने के कारण फिर अपनी अपनी प्ररूपणाएं दी हैं। उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपना वर्णन किया कि ब्रह्मा इस प्रकार से करते हैं, फिर विश्वकर्मा अमुक कार्य संभालते हैं, महेश्वर संहार का काम करते हैं, और फिर नारायण पालनकर्ता होते हैं। तो सब उनने फिर विभाग बना दिया, और उसको अपन प्रतीक रूप में मानो तो फिर अपन अपने कर्मों में, अपने सिद्धांत में भी वो सारी बातें घटा सकते हैं। वो सारी बातें किसी न किसी नए से हर बात सच होती है, कोई भी कथन सर्वथा मिथ्या नहीं होता। जैसे जिनेन्द्र वर्णी जी ने कहा ना कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं खड़कता, इसको जैन दर्शन से कैसे सिद्ध करोगे? बहुत सरल है सिद्ध करना, क्योंकि पत्ते जो हिलते हैं वो हवा से हिलते हैं, और हवा जो होती है उसमें वायु कायिक जीव होते हैं, और जीव जो होता है निश्चय से भगवान होता है। आ गया समझ? तो भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बात सिद्ध हो गई। पर वो दृष्टि लगानी पड़ती है, तो दृष्टि अगर जिसके पास सही है, जिनवाणी माता अपने बेटे को निश्चय और व्यवहार ये दोनों आंखें देती, दोनों आंखों में अच्छे से वो सूरमा और काजल आंज करके रखती कि इसकी आंखें खराब ना हो जाए बच्चे की, बहुत चिंता करती है जिनवाणी माता। तो ऐसी स्थिति में वो दोनों आंखों को एकदम सही रखती है जिनवाणी माता। समयसार ग्रंथ में कहा ना कि ऐसे एक आंख बंद करो, बोले द्रव्यार्थिक वाली, वो माँ बोलती कि देख अब दूसरी आंख से देख जीव को, तो उसको निगोद से लेकर नर नारक आदि सिद्ध पर्याय सब दिखती है। फिर जिनवाणी बोलती है कि अब इसको बंद कर, बोले पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक की आंख से देख, एक जीव दिखाई देता पूरा अनादि से अनंत काल तक। द्रव्यार्थिक ने सिर्फ जीव द्रव्य को देखता है, पर्यायार्थिक न सिर्फ जीव की पर्यायों को देखती। अब फिर जिनवाणी बोलती है कि तेरे को कौन सा पसंद है, तो फिर जो निश्चयावलंबी बोलता है कि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है जीव द्रव्य। फिर दूसरे से पूछते कि तुझे, बोले कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, बोले कितने डिजाइन है इसमें, देखो निगोद नर नारक कितनी सारी वेराइटी, 84 लाख यूनियन, क्या बढ़िया दिख रहा है सीन। तो फिर जिनवाणी माता कहती कि बेटे दोनों मिथ्या दृष्टि हो, अब दोनों आंखों को खोल करके देखो। तो दोनों आंखों को जब खोल करके देखता है तो अनंत पर्यायों में व्याप्त एक जीव का विस्तार दिखाई देता है, तब उसको समझ में आता है कि यह है जीव का स्वरूप। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल गया मोह के कारण, और अब अपने आप को पहचाने कैसे, तो अकेले द्रव्यार्थिक नय से भी नहीं और अकेले पर्यायार्थिक नय से भी नहीं। ध्यान से सुनना इस बात को, बल्कि दोनों आंखों को खोलकर जिनवाणी मां का बेटा कभी काना नहीं होता, और जितने एक नय को पकड़ने वाले लोग हैं चाहे वो व्यवहारावलंबी हो या निश्चयावलंबी हो, वो सब बेचारे काने हैं, वो जिनवाणी के पुत्रनी है, वो जैना भास है। आभास का मतलब वैसा लगना लेकिन वैसा होना नहीं। जैसे जलाभास दिखता है गर्मियों के मौसम में, रास्ते पर दूर आप देखो पानी दिखेगा लेकिन वो जल नहीं, जलाभास है। वैसे ही सुखाभास होता है, लगता है कि फलानी चीज में सुख है लेकिन उस चीज में झांक कर देखते हैं दो पांच दिनों में लगता है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, और आगे कहीं देखें जरा तो भटक जाता, फिर वहां भी सुख नहीं मिलता। तो दोनों आंखों से देखना जिनवाणी माता सिखलाती, और जब वो देखता है दोनों आंखों से गदगद हो जाता है कि क्या चीज दिखा दी माँ ने, धन्य हो जाता उसका जीवन।